यथा रूप भाषांतर और भावार्थ लिखे हैं और ग्रंथराज श्रीमद भागवतम उनका भी उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखे हैं। तो इन दोनों ग्रंथों में से हम कुछ अब हमारे जीवन में प्रकाश डालेंगे। जितना आप गौर से सुन के, कान से सुन के हृदय में उतारोगे और हृदय में उतार के गांठ लगाओगे, इतना आपका जीवन धन्य बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है भागवत चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं कि अमार माधुर्य नित्य नव नव होय, स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्त करे आस्वादन। सो भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाएं हर रोज नवीन नवीन होती रहती है, लेकिन भक्त अपने प्रेम के, भगवत प्रेम के अनुरूप जितने हैं इतना आस्वादन वो कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि पक्षी अनेक अनेक शक्ति वाले होते हैं, चिड़िया से ज्यादा गीत से ज्यादा भगवान का जो वाहन है गरुड़ देव, तो अलग अलग शक्तियां हैं, उसके मुताबिक अलग अलग ऊंचाई पर वो उद्यान कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसी तरह स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्त करे आस्वादन, अपने अपने कृष्ण प्रेम के अनुरूप हम भगवान की माधुर्य लीलाएं आस्वादन कर सकते हैं। तो कान से सुनना है, हृदय में उतारना है और बाद में फिक्स कर देना, गांठ लगाना कि ये सारी जिंदगी मेरे हृदय में रहेगा। तो आप जैसे जैसे हम तय करते चलेंगे वैसे वैसे हमको ये फिक्स करना है। साइंटिफिक दृष्टि से भी यू हैव टू फिक्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉट लास्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज पहले फिक्स करनी पड़ेगी, बाद में वो फिक्स की रखो, उनको अनफिक्स मत करो, उनको गांठ लगाए रखो। वो गांठ छूट जाएगी पहली चीज की, दूसरी चीज में गांठ लगाने जाओगे पहले छूट जाएगी, तो अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके जैसी फिलोसॉफी होगी। वो क्या करता था, कई प्रांत जीत लेता था और आगे बढ़ता था और वहां भी जीत लेता था और उससे आगे बढ़ता था, वो भी जीतता था, तो जो पहले वाला जीत लिया था वो चला जाता, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम ये 7 दिन आपको बहुत वैज्ञानिक रीत से आपको ऊपर उठाना प्रयत्न करेंगे। तो आपको 7 दिन का लेशन, मैं तो ये कहूंगा कि आप कई माताएं पिताएं किताब लेके आए हैं, नोट पेड और पेन, तो आप लेके आओ, आपको सवाल भी पूछा जाएगा, आप सबकी कंपटीशन होगी, स्पिरिचुअल स्पर्धा आध्यात्मिक स्पर्धा होगी और आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये सातों लेक्चर, पहला लेक्चर फिक्स पहले करो, बाद में दूसरा भी फिक्स करो, तीसरा फिक्स करो, ऐसे आगे बढ़ो। तो आज हम चर्चा करेंगे आनंद की खोज और सुख, असली सुख क्या है, नकली सुख क्या है, नकली दुख क्या है, असली दुख भी होता है, असली नकली दोनों दुख होते हैं, असली नकली दोनों सुख भी होते हैं। ये सब चर्चा हम करेंगे। तो आपको बराबर ये समझ के फिक्स करना होगा। सो चैतन्य देव वो वाराणसी में स्थित थे और वहां श्री सनातन गोस्वामी की भेंट होती है। ये सारे सात लेक्चर वही अगर सही ढंग से देखे जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य का दिव्य उपदेश ये पुस्तक है। बाहर इस ग्रेस हृदय चैतन्य प्रभु ने बुक टेबल लगाया है तो वहाँ ये पुस्तक उपलब्ध है, आप जरूर घर ले जाइए और पढ़िए। आपको सारे शास्त्रों का निचोड़ ये पुस्तक में मिलेगा। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों तत्व आपको ये पुस्तक से प्राप्त होंगे। और ये पुस्तक से लेके ही हम बहुत सरल भाषा में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, क्योंकि न मैं चैतन्य देव हूं न आप रूप सनातन हो, ये सब ऊंची गहराइयों पे बात करते हैं। तो उनको सरल भाषा में मैं व्यक्त करूंगा और सरल भाषा में आप समझोगे। सनातन गोस्वामी सबसे पहला प्रश्न करते हैं, के अमी केने हमार, के अमी केने हमार जाय तापत्रय, यहा नाही जानी अमी के मने हित है। तो ये आध्यात्मिक इंक्वायरी है, आध्यात्मिक जिज्ञासा तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ये मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य जन्म जो दुर्लभ है वो हमने पाया। तो मनुष्य जन्म का एकमात्र मकसद ध्येय है कि हम ये सवाल करें कि हम मैं कौन हूं और मैं तीन तापों में मैं दुखी हूं और ये तीन ताप मेरे कैसे दूर हो। यह नहीं जानी हमी के मने हित है, मेरा हित क्या है वो मैं नहीं जानता। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहां हम देखते हैं कि के अमी मैं कौन हूं और तापत्रय मैं खूब दुखी हूं। तो दुख क्या है, वैसे आत्मा को न दुख है न सुख है। दुख की शुरुआत एक बड़ी भूल से होती है। वो भूल क्या है कि अपने को जो हम नहीं है वो समझना। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरे शरीर। तो ये भूल से हमारे दुख की शुरुआत होती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यम स्थान स्थिति क्षुभार्थ। तो मात्रा स्पर्शा मतलब कि हमारी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया पांच, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय है। ये ज्ञानेन्द्रियों को, वो ज्ञानेन्द्रिय के विषयों का स्पर्श होता है तो उसमें से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेन्द्रिय मतलब हमारी ग्रोस, हमारी स्थूल इंद्रिया, स्थूल देह, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये ज्ञानेन्द्रिय है और हमारा शरीर ये ज्ञानेन्द्रियों का बना है। पांच कर्मेंद्रिय भी है। तो हमारे ज्ञानेन्द्रियों का स्पर्श जब उनके विषयों के साथ होता है तब उसमें से क्या होता है, सेंसेशन पैदा होता है और वो सेंसेशन में से सुख और दुख उत्पन्न होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा देने वाला, शीतोष्ण सुख दुख दा। तो सुख और दुख जब विषयों का स्पर्श इंद्रियों से होता है तो वहां से सुख दुख पैदा होता है। तो उसमें आत्मा की तो बात आई नहीं, हम आत्मा हैं तो आत्मा की तो बात आई नहीं कि आत्मा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, भगवान ऐसा तो बोले नहीं। भगवान क्या बोले, मात्रा स्पर्श तन मात्रा, मात्रा मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों का स्पर्श होना। इंद्रियों के पांच ज्ञानेन्द्रिय के पांच विषय है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर से पांच इंद्रियों के विषय कौन से, शब्द स्पर्श रूप रसना रस एंड गंध। तो ये विषय है। तो इंद्रियां जब ये विषय को टच करती है, जैसे कि टच की बात है, टच की बात है कि टच मीन स्किन। तो भागवत में लिखा है कि यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम तुच्छ कंदुलेन करयोर एव दुख दुखम तृप्यन्ति नाया कृपणा बहु दुख बाज कंदुतिवान मानसिजा सहेत धीर। तो जैसे स्किन, स्किन से आप रब करते हो इचिंग, उसमें से इचिंग पैदा होता है। जैसे इचिंग आपको खुजली है, कोई आपको करजवा हुआ है, साइड में होगा कि कॉल इन हिंदी, तो उसके ऊपर आप स्क्रैच करते हो, ऐसे हर मिनट आपको खुजली होती है। तो जैसे ज्यादा खुजली को मिटाना प्रयत्न करोगे ज्यादा बढ़ेगी, तो खुजली आती है। जैसे खुजली मिटाना, तो ये रबिंग वन स्किन विद अनदर स्किन रबिंग यन मैथुन आदि आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। सो मैथुन जो है वो एक स्किन दूसरे स्किन के साथ रबिंग कंदुल एंड करयोर, करयोर विथ लविंग टू हैंड्स कर, तो वैसे ही मैथुन, तो ये सेंसेशन है स्किन और स्किन का विषय, शब्द स्पर्श, सो स्पर्श ये विषय है स्किन का, चमड़ी का विषय है स्पर्श। तो यद मैथुन आदि ग्रह मेदी, ग्रह मेदी ग्रहस्थ, ग्रह मेदी, ग्रह मेदी का अर्थ है कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है तो उसको ग्रह मेदी कहते हैं। तो यहाँ भागवत में कहते हैं कि ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छम, यद मैथुन आदि, मैथुन आदि मतलब कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या तो मैथुन आदि मतलब कि आहार निंद्रा भय मैथुन, आहार निंद्रा भय और मैथुन, तो ये हमारी इंद्रियों को जब टच करता है विषय तो उसमें से सुख और दुख पैदा होता है। यम मैथुन आदि ग्रह में भी सुखम ही तुच्छ, वो सुख जो मैथुन आदि सुख है वो तुच्छ सुख है, सुखम ही तुच्छ। ठीक है, कोई समय चुक समय के लिए लगता है कि हम आनंद प्रमोद कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सांस हम गवा रहे हैं, हमारा हमारी जो शक्ति है सब इंद्रियों से शक्ति का हम व्यय कर रहे हैं, हमारा शरीर हम शिथिल बना रहे हैं, बुद्धि ट्रेन कर रहे हैं, बुद्धि को हम डल बना रहे हैं, ऊर्ध्व रहता, ऊर्ध्व रहता बनना चाहिए। तो इसीलिए कहा सुखम ही तुच्छ, कंदुल एन करयो एव दुख दुखम, और ये यन मैथुन आदि मतलब कि ये आहार निद्रा भय मैथुन या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जब हमारे इंद्रियों से स्पर्श करते हैं तो एव दुख दुखम, इसमें से दुख ही पैदा होता है, लगता है सुख लेकिन दुखी है, जैसे कि जाजवा का नीर होता है, रण में आप जाओगे तो रण में पानी नहीं होता, और तृष्णा वाला ब्रू जब रण में जाता है तो उनको लगता है कि आगे इतनी दूरी पर मैं जाऊंगा तो मैं देख रहा हूं यहां से कि वहां पानी है, लेकिन जब मृग वहां जाता है तो पानी नहीं होता, मृग मरीची संसारी सुख एवं जाजवाना नीरज एवं, संसारी का सुख जाजवा का नीर जैसा है, मृग मरीची जैसा। तो कहते हैं ये दुख दुखम, ये श्लोक में कई बार दुख दुख होता है, यम मैथुन आदि ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छ, ये सब इंद्रियों को इंद्रियों का विषय देना वो तुच्छ है, कंदुल एन करयोर एव दुख दुखम, और उसमें से दुख ही पैदा होता है, सुख पैदा नहीं होता। असली सुख क्या है, ये असली सुख नहीं है, मराज जैसा, मजा मराज इन डेजर्ट, लगता है सुख लेकिन दुख, एव दुख दुखम तृप्यंती ना यहा, इनसे मनुष्य तृप्ति नहीं पाता, आपको कभी भी तृप्ति नहीं होगी, लगता है तृप्ति हो रही है लेकिन ऑल फॉल्स। तृप्यंती ना यहा बहु दुख बाज, फिर से बोलते बहुत दुख मिलेगा, बहुत दुख बाज कंदुती मानुषी जान, और ये सब मानुषी जान है, सुख लगता है सुख लेकिन ये मनुष्य महानुष्य जान मतलब मन से पैदा हुआ है, मन माना सुख है, ये सुख नहीं है क्या? ये सुख नहीं है, महानुष्य जान सहे तो धीर, जो धीर होते हैं वो इन इंद्रियों की तृप्ति में और इंद्रियों के विषय में रहते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये मानुषी जान है, ये मन से पैदा हुआ, कोई भी विषय ले लो पहले मन से पैदा होगा कि मैं ये विषय चाहता हूं, तो मन में इन विषय का इंद्रियों से स्पर्श होगा और इंद्रियों का स्पर्श से विचार पैदा होगा और विचार पैदा होने से वो जाएगा मन में, तो मन की परिभाषा है विचारों का सतत प्रवाह। तो सब इंद्रियां सुख के लिए विषयों की विषयों का ध्यान करती हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगात तेसु बजायते, संगात संजयते काम कामा क्रोध उपजायते, क्रोधात संभवती सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब नाश, सर्वांगे आपका नाश होगा। और शुरुआत कहां से नाश की होती है? ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय विषयों पर जब ध्यान करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा क्या होता है? नाश। ध्यान को विषयान पुंसा संगात तेसु उपजायते, उसमें से आसक्ति उत्पन्न होगी, संगात संजयते काम, और ये आसक्ति में से काम पैदा होगा, काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये हर इंद्रियों का काम, हर इंद्रियों का विषय जब गंदा होता है तो उसको बोलते हैं काम, इंद्रियों का विषय जब पवित्र होता है तो उनको बोलते हैं भक्ति। जैसे कि यही आंखों से हम सुंदर भगवान की छवि, सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन कर सकते हैं, और यही आंख से हम कोई गंदा विषय भी सेवन कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट काम संगात संजयते काम, और काम जब हम फुलफिल नहीं करते, जब काम कामनाएं हमारी पूर्ण नहीं होती, तो उसमें से क्रोध जन्मता है, एक क्रोध का उद्गम स्थान मात्रा स्पर्श, या तो इंद्रियों के विषयों पर ध्यान, एक क्रोध का की प्यारी सीढ़ी है। ध्यायते विषयान पुंसा संगाते सुजायते, संगात संजयते काम कामात क्रोध उपजायते, क्रोधात संभवते सम्मोह, और क्रोध के बाद आप सम्मोह मतलब कि क्रेजी बोलते हैं ना, पागलपन, पागल हो जाओगे, क्रोध हो जाएगा, क्रोध क्रोध को वशीभूत हो जाओगे तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, आप अपने में नहीं रहोगे। सम्मोहात सम्मोहात स्मृति स्मृति नाश, उनसे आपकी स्मृति का नाश होगा, और स्मृति नाश होने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश हो जाए, डिस्क्रिमिनेटिंग बुद्धि इज ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, अच्छा बुरा जांचने की जो शक्ति है उनका नाम है बुद्धि, तो बुद्धि नाश हो जाए, जो गुण है या सुवर है वो अच्छा क्या है बुरा क्या है बुद्धि नहीं है। हलवा दोगे तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, उनको विष्टा अच्छा लगेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो ऐसे प्राणी की तरह हम बन जाते हैं, बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से हमारा सत्या नाश हो जाता है। तो ये इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों पर जो ध्यान, उनका स्पर्श, यही सुख और दुख का कारण, सुख और दुख का कारण मात्रा स्पर्शास्तु कमते ध्याय तो विषय अनुपुंस। तो ये सुख और दुख का कारण, ये शरीर ही दुख का कारण है। इसीलिए हमको चाहिए कि ये फूल शरीर हमको भौतिक नहीं चाहिए। ये भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ शरीर, ये शरीर हमको नहीं चाहिए। दिव्य देह चाहिए, दिव्य देह सच्चिदानंद, ये आत्मा है दिव्य है। और आत्मा को देह, आत्मा देह, आत्मा कोई निराकार निरंजन ऐसा नहीं है। आत्मा को, जो आत्मा को जैसा रूप है ऐसा ही शरीर को रूप मिलता है। तो ये आत्मा सच्चिदानंद है और ये देह स्थूल देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का भौतिक है। आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है, दोनों अलग है। दोनों में कोई एकता नहीं है, दोनों अलग चीज है, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। तो ये भौतिक शरीर जब इंद्रियों के विषयों पर ध्यान करता है या स्पर्श करता है तो उसमें से सुख दुख पैदा होता है। तो ये जो सुख है शरीर में से पैदा हुआ सुख, ये सुख, ये सुख लगता है कि सुख है लेकिन सुख नहीं है। क्यों? कि ये शरीर निरानंद है, आत्मा आनंदमय है। ये शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। ये शरीर क्षणिक है, सनातन नहीं, आत्मा सनातन है। तो निरानंद शरीर में से आप सुख पैदा करना चाहते हो ही नहीं सकता। आनंदमय अभ्यास, आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास। तो आत्मा आनंदमय है इसलिए आत्मा में से आनंद, परमात्मा श्री कृष्ण आनंदमय है, परमात्मा का स्रोत है कृष्ण, इसलिए कृष्ण ही आनंद का स्रोत है। ये सच्चिदानंद घन है, कृष्ण रसो वही सह, कृष्ण सब रसों के आधार है, उद्गम स्थान है। तो ये निरानंद से आनंद पैदा करना हम चाहते हैं, फिर जो की बात है। संसारी को सुख जाने वाला निरज, निरानंद से सुख हो ही नहीं सकता। निरानंद ये जो शरीर है, जैसे कि आपको उदाहरण दिया जाए कि पत्थर है उनमें से तेल निकालो, पत्थर में तेल है ही नहीं। अब जितना भी उनको निकालना प्रयत्न करोगे व्यर्थ है। उसी तरह शरीर में आनंद है ही नहीं, क्षण चपल सुख मिल जाएगा, लेकिन चपल सुख वो भी आत्मा में से आता है, चपल सुख भी। लेकिन हम मानुषी जब समझते हैं कि ये सुख मिल रहा है, इट इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर, कोई एक सुंदर स्त्री है और ये मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ी है और सुंदर स्त्री का फेस अगर आप टच करना चाहते मिरर में टच करते रहोगे तो मिरर में प्रतिबिंब है, उनमें से कुछ सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि मिरर में, और मिरर में सुंदर स्त्री की प्रतिमा जो फिजूल की है, सत्य नहीं है, उनमें से आप टचिंग का सुख प्राप्त करना चाहते हो, स्पर्श करना चाहते हो, हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक कल उदाहरण दिया था कि एक आम का, सुंदर आम का पेड़ हो, हापुस मैंगो, और एक झील जो बहुत स्टेडी सुंदर झील है जहाँ पानी बहुत गिरता है, तो ये सुंदर आम का पेड़, आम जो पेड़ से, हमें पेड़ जो आम से परिपूर्ण है, तो पानी में हमको लगता है कि आम है, तो कई लोग पानी में आम को ढूंढते हैं, आम को जहां हम दिखाई देते हैं वहां जाते हैं, वहां दिखाई देते, लेकिन वो फिजूल का प्रयत्न है, वो प्रतिबिंब है। पेड़ पर जाओगे तो मिलेगा, तो पेड़ सही आम दे सकता है, और हम प्रतिमा में ढूंढेंगे तो कुछ सुख नहीं मिल सकता। इसी तरह ये शरीर निरानंद है, निरानंद शरीर में से आनंद या सुख पैदा करना चाहोगे तो ज्यादातर दुखी मिलेगा। सुख पैदा करने का प्रयत्न ज्यादा दुखमय होगा। जैसे शरीर को अच्छी तरह रखने के लिए आप हर रोज पैसों का उपार्जन करोगे, तो जितना सुख आपको मिलेगा उपार्जन से, उससे ज्यादा 12-12 घंटा काम करो, नौकरी करो, और उसमें से सुख कितना मिलेगा? घर ले जाओगे, पैसा करोड़ हो जाएगा, बैंक में रख नहीं पाओगे, कौन चोरी कर जाएगा, दरोड़ा पड़ेगा, बैंक गवर्नमेंट का क्या होगा, चिंता में डिप्रेशन। तो यह सुख लगता है कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन निरानंद में सुख नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो रहेगा ही रहेगा। सुख ढूंढने का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा रहेगा। हम चाहते हैं कि सुख कैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। सुख का उद्गम स्थान हम खुद हैं।